परिशिष्ट 19 मांचू कुओं का शेष भाग। 15 सितंबर 1932 को जापान और मांचू कुओं ने एक संधि पर हस्ताक्षर किए जिसे निचिमान गीते ईशो के नाम से जाना जाता है। इस संधि पत्र की शर्तों के अनुसार जापान ने मंचूरिया की आंतरिक व बाह्य सुरक्षा का उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लिया। अब मंचूरियाई मामले कुआंगतुंग सेना द्वारा सामान्य मामलों के बोर्ड के जरिए निर्देशित होने लगा। इस बोर्ड की सहमति के बिना कोई भी अध्यादेश, नीति, कानून या राजाज्ञा लागू नहीं हो सकती थी। यह बोर्ड, जिसके सदस्य जापानी होते थे, अपनी योजनाओं व फैसलों को टोक्यो में मंचूरिया मामलों के बोर्ड के साथ समन्वित करता था। जुलाई 1932 में सामंजस्य समाज की स्थापना हुई। कहने को इसका कार्य विभिन्न प्रजातियों में मेलजोल बढ़ाना था, पर वास्तव में इसका कार्य केवल विरोध को कुचलना ही नहीं बल्कि प्रांतों में इसके कार्यकलापों द्वारा जासूसी करना भी था। 1934 में कुआंगतुंग सेना के कमांडिंग जनरल को मांचू कुओं का पूर्ण शक्ति संपन्न राजदूत नियुक्त किया गया। 20वीं शताब्दी के आरंभ में कुछ जापानी आप्रवासी इस क्षेत्र में बस चुके थे, किंतु प्रतिकूल जलवायु तथा आप्रवासियों द्वारा स्थानीय किसानों से मुकाबला न कर पाने के कारण आप्रवास अधिक नहीं हो सका। लेकिन 1932 के बाद रूसियों और बाह्य मंगोली सैनिकों से रक्षा के लिए जापानियों का सुदूर क्षेत्रों में रहना नितांत आवश्यक हो गया। जापानी सरकार ने कई योजनाएं बनाई, लेकिन तब भी 1940 तक लगभग 20,000 जापानी परिवार ही मांचू कुओं में बसे, जिनके पास 1,18,000 एकड़ कृषि योग्य भूमि थी। किंतु कोरियाई अप्रवासियों को बसाकर चावल की पैदावार बढ़ाने की मांचू कुओं सरकार की नीति काफ़ी सफल रही। इस नीति का एक उद्देश्य जापानी साम्राज्यवादियों के लिए रास्ता साफ करना भी था। इस नीति के फलस्वरूप मांचू कुओं में कोरियाई लोगों की संख्या 1920 के दशक में 8 लाख से बढ़कर 1945 में 20 लाख हो गई। दक्षिण मंचूरियाई रेलवे कंपनी, साउथ मंचूरियन रेलवे कंपनी ने 1904 से 5 के रूसी जापानी युद्ध के बाद से ही जापानी लाभ तथा उसके प्रभाव के फैलाव का बीड़ा उठाया। इस कंपनी की संपत्ति और कार्य में जन परिवहन, खनन तथा कृषि के अतिरिक्त रेलवे के समीप के क्षेत्रों का प्रशासन भी स्थापित था, जो धीरे धीरे उसके अधिकार में आ गए। ऐसा प्रतीत होता है कि वहाँ हर तरह के शोषण के अधिकतम अवसर उपलब्ध थे। लेकिन जब 1930 के दशक में कुआंगतुंग सेना के आदेश चलने लगे, तब मांचू कुओं में रेलवे साम्राज्य नष्ट होने लगा। मई 1937 के नियंत्रण कानून के अंतर्गत मांचू कुओं के प्रमुख आयोगों को जापान के पंचवर्षीय कार्यक्रम में शामिल कर लिया गया। 1937 में जब चीन के साथ युद्ध आरंभ हुआ, तो दक्षिणी मंचूरियाई रेलवे कंपनी की विभिन्न शाखाओं के आइकावा की निशासन कंपनी ने अपने नियंत्रण में कर लिया। निशासन को कुआंगतुंग सेना का समर्थन प्राप्त था, लेकिन जापानी पराजय से कुछ देर पहले यह कंपनी गंभीर वित्तीय कठिनाइयों में फंस गई। जापानियों को जिन समस्याओं का मांचू कुओं में सामना करना पड़ा, उनमें से एक हथियारबंद लुटेरों द्वारा पैदा की गई समस्या थी। इन लुटेरे गुटों में धर्मांध व्यक्ति, सरकार विरोधी लोग, विस्थापित किसान और पदच्युत सेनापति चांग शुएलियांग के बचे खुचे अनुयायी थे। मांचू कुओं को दूसरा खतरा रूस से था। 1932 में जापान ने रूस के अनाक्रमण संधि के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था, लेकिन 1933 में चीन के पूर्वी रेलवे में रूसी शेयरों का मांचू कुओं को स्थानांतरण सफलतापूर्वक करा लिया गया। फिर भी बाह्य मंगोलिया और सोवियत यूनियन की सेनाओं के साथ सीमा पर झड़पें निरंतर होती रही। इनमें जुलाई 1938 की छांग कुफंग की सैनिक लड़ाई तथा मई 1939 को नोमुनहान की भीषण वायु व टैंक लड़ाई प्रमुख है। जब दिसंबर 1941 में जापान द्वितीय विश्व युद्ध में शरीक हुआ, तो मांचू कुओं ने जापान से आयातों में कमी करके अपना धातु, खनिज और कृषि उत्पादन बढ़ा लिया, ताकि युद्ध में जापान की सहायता की जा सके। 1944 के ग्रीष्म में अमेरिका ने मांचुकुओ पर बम वर्षक हमले किए। कुआंगतुंग सेना को प्रशांत मोर्चे पर जापान भेज दिया गया। 9 अगस्त 1945 को रूस ने मांचुकुओ पर चढ़ाई कर दी। शिनचिंग को जल्दी में खाली कर दिया गया और राजधानी को तुनहुआ ले जाया गया। 18 अगस्त 1945 को फियू ने राज त्याग दिया। अगले ही दिन फियू को शनयांग हवाई अड्डे पर जापान भागने की कोशिश करते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। इसके साथ ही मांचुकुओ पर जापानी आधिपत्य समाप्त हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की पराजय के बाद जापानी विस्थापितों को वहां से निकाल दिया गया।